प्रिय भाइयों, संसार में जितने भी धर्म हैं, उनमें से हर एक का नाम या तो किसी विशेष व्यक्ति के नाम पर रखा गया है या उस जाति के नाम पर जिसके अंदर वो धर्म पैदा हुआ। मिसाल के तौर पर ईसाई धर्म का नाम इसलिए ईसाई धर्म है जो इसका संबंध हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से है। बुद्ध मत का नाम इसलिए बुद्ध मत है कि उसके प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। जरदुश्ती का नाम अपने प्रवर्तक जरदुश्ती के नाम पर है। यहूदी धर्म एक विशेष कबीला में पैदा हुआ जिसका नाम यहूदा था। ऐसा ही हाल दूसरे धर्मों के नामों का भी है, परंतु इस्लाम की विशेषता यह है कि वह किसी व्यक्ति या जाति से संबंधित नहीं, बल्कि उसका नाम एक विशेष गुण को जाहिर करता है जो इस्लाम शब्द के अर्थ में पाया जाता है। इस्लाम से यह जाहिर होता है कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की तक नहीं, न किसी विशेष जाति तक सीमित है। इसका संपर्क व्यक्ति देश या जाति से नहीं, केवल इस्लाम का गुण लोगों में पैदा करना इसका उद्देश्य है। प्रत्येक युग और प्रत्येक जाति के जिन शक्ति और नेक लोगों में यह गुण पाया गया है, वो सब मुस्लिम थे, मुस्लिम है और भविष्य में मुस्लिम रहेंगे। इस्लाम का अर्थ है हुक्म मानना, आत्मसम्पन्न करना, स्वयं आज्ञा पालन करना। इस्लाम धर्म का नाम इस्लाम इसलिए रखा गया है कि ये अल्लाह के आदेशों का अनुवर्तन और उसका आज्ञा पालन करना है। आप देखते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब एक नियम और विधि के अधीन है। चांद, सूरज, तारे, जमीन, सारी चीजें एक हत्ता के मनुष्य भी एक नियम का अधीन है। आप मनुष्य की हालत के ऊपर अगर गौर करेंगे तो आपको मालूम हुआ कि वह प्राकृतिक नियम के अधीन है। जो नियम उसकी सृष्टि के लिए नियत की गई है उसी के अनुसार सांस लेता, चलता, फिरता और घर घर दौड़ता है। यह प्रजल नियम जिसमें बड़े बड़े ग्रहों से लेकर भूमि का एक छोटा सा छोटा कण जकड़ा हुआ है, एक महान शासक का बनाया हुआ नियम है। संपूर्ण नीति और जिसकी प्रत्येक वस्तु उस शासक के आदेश और उसकी आज्ञा का पालन करती है, क्योंकि वह उसी के बनाए हुए नियम का पालन कर रही है, इसलिए संपूर्ण विश्व का धर्म इस्लाम है। जैसा कि अभी हमने बताया है कि ईश्वर की आज्ञा पालन और उसके आदेश अनुवर्तन को ही इस्लाम कहते हैं। मनुष्य की एक हैसियत वो है, दूसरी हैसियत वो है कि उसके पास बुद्धि है, सोच और समझ है और फैसला करने की शक्ति है। ये दो हैसियतें अलग अलग पाई जाती है। पहली हैसियत में वह संसार की दूसरी सारी चीजों के साथ जन्मजात मुस्लिम है और मुस्लिम होने के लिए बाध्य है, मजबूर है। दूसरी हैसियत में मुस्लिम होना या न होना उसके अधिकार में है और इसी अधिकार के कारण मनुष्य दो वर्गों में विभाजित हो जाता है। एक मनुष्य वो है जो अपने सृष्टिकर्ता को पहचानता है, उसको अपना स्वामी और प्रभु मानता है और अपने जीवन के उसके कार्यों में भी उसी से पसंद किए गए कानून के ऊपर चलता है। वह पूरा मुस्लिम है, उसका इस्लाम पूर्ण हो गया, क्योंकि अब उसका जीवन पूर्ण रूप से इस्लाम है। अब वह जानबूझ कर भी उसका आज्ञाकारी बन गया जिसका आज्ञा पालन वह अतिरिक्त रूप से कर रहा था। अब वह सरेक्षा पूर्वक भी उसी अल्लाह का आज्ञाकारी है जिसका आज्ञाकारी वह बिना संकल्प के था। अब उसका ज्ञान यथार्थ है क्योंकि वो अल्लाह को जान गया जिसने उसे जानने और ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति दी है। अब वो उसकी बुद्धि और उसकी संगति वो सोचित है और उसको पूरा विश्वास प्राप्त है, क्योंकि उसने सोच समझ कर उस ईश्वर को आज्ञा पालन का निर्णय किया जिसने उसे सोचने, समझने और फैसला करने की योग्यता प्रदान की है। अब उसकी जबान शक्ति है क्योंकि वह अल्लाह को मान रही है जिसने उसको बोलने की शक्ति प्रदान की है। संपूर्ण विश्व के साथ उसकी आत्मीयता हो गई क्योंकि विश्व की सारी चीजें जिसकी बंदगी कर रही है उसी की बंदगी वो भी कर रही है। अब वह जमीन पर अल्लाह का प्रतिनिधि है, संपूर्ण संसार उसका है और वह अल्लाह का है। इसके मुकाबले में दूसरा मनुष्य है जो मुस्लिम पैदा हुआ, ईश्वर का आज्ञाकारी पैदा हुआ और अपने जीवन पर घर अचूकन रूप में मुस्लिम ही रहा, परंतु अपनी ज्ञान और वृद्धि की शक्ति को वो काम लेकर उसने ईश्वर को न पहचाना और अपने स्वतंत्र क्षेत्र में उसने ईश्वर का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। यह व्यक्ति काफिर है। कुफ्र का मौलिक अर्थ है छिपाना और पर्दा डालना, ایسے وقت کو اس لیے قابل کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی صحت پراکرتی پر نادانی کا پردہ ڈال رکھا ہے. کفر ایک پرکار کی جہالت بھی ہے, اجانتا بھی ہے, بلکہ واستوک اجانتا کفری ہے. اس کے برقر اور کیا اجانتا ہو سکتی ہے کہ منش ایشور سے اپریشت ہو. ایک ویکتی دنیا کے اتنے بڑے کارخانے کی دن رات چلتے ہوئے دیکھتا ہے, پرنتو نہیں جانتا کہ اس کارخانے کو بنانے اور چلانے والا کون ہے, اور وہ کون کاریگر ہے جس نے کوئلے اور لوہے اور کیلشیم اور سوڈیم اور ایسی کچھ چیزوں سے ملا کر ملک جیسے انوک انترانی کا رچنا کر دی. ایک وقت اس سنسار میں ہر اور ایسی چیزوں اور ایسے کام دیکھتا, ہر اور ایسی چیزیں اور ایسے کام دیکھتا ہے جن میں انجینئرنگ, رسائن, جان اور سمجھ پرتیبھاؤں کے چمتکار دکھائی دیتے ہیں. پرنتو وہ نہیں جانتا کہ وہ جان سچ جان رجسٹر اور بیماری والا سچ کا کتنے پردان کی ہے. سوچیے اور وچار کیجیے ایسے ویکتی کے لیے واستوک جان کے دوار کیسے کھل سکتے ہیں جس کو جان کا پہلا کرایہ نہ ملا ہو. کفر ایک ظلم بھی ہے, بلکہ سب سے بڑا ظلم کفر ہے. آپ جانتے ہیں کہ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم یہ ہے کہ کسی چیز سے اس کے سمبھاؤ اور پراکرتی کے ورد زبردستی کام لیا جائے. آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب ایشوری آگیا کے ادھین ہیں, اور ان کی پراکرتی اور نیم کا پالن کرنا ہی اسلام ہے. کہ منش کا سمپورن شریر اور اس کا پرتیک بھاگ جنم جات اسی پراکرتی کے انوروپ ہے. اللہ نے ان چیزوں پر منش کو تھوڑا سا پربت ایسے پردان کیا ہے, پرنتو ہر چیز کی پراکرتی یہ چاہتی ہے اس کے ایشور اچھا کے انوسار کام لیا جائے. کنتو جو ویکتی کفر کرتا ہے وہ ان سب چیزوں سے ان کی پراکرتی کے ورودھ کام لیتا ہے. وہ اپنے دل میں دوسروں کی بڑائی پریم اور بھے کو جگہ دیتا ہے, حالانکہ دل کی پراکرتی وہ چاہتی ہے کہ اس میں ایشور کی بڑائی, اس کا پریم, اس کا ڈر ہو. وہ اپنی سمس انڈیوں سے اور دنیا کی ان سب چیزوں سے جو اس کے ادھیکار میں ہیں ایشور اچھا کے ورودھ کام لیتا ہے. حالانکہ ہر چیز کی پراکرتی وہ چاہتی ہے اس ایشور ودھی اور نیم کے انوسار کام لیا جائے. بتائیے ایسے ویکتی سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا اپنے جیون میں ہر سمے ہر چیز پر, یہاں تک کہ اپنے خواب پر بھی ظلم کرتا ہے. آپ اس سے کہیں یہ نہیں سمجھ لیجیے کہ کفر سے منش اللہ کا کچھ بگاڑ لیتا ہے. جس سمراج کا راج اتنا بڑا ہے کہ وہ بڑی سے بڑی دوربین لگا کر بھی اب تک یہ معلوم نہ کر سکے وہ کہاں سے آرمبھ ہوتا ہے اور کہاں سماپت ہوتا ہے. جس سمراج کی شکتی اتنی اپار ہے کہ ساری پرتھوی اور سورج اور منگل اور ایسی کروڑوں گرہ اس کے سنکیت پر جلد کی طرح پھر رہے ہیں. جس سمراج کی سمپتی ایسی اپار ہے کہ سمپورن وشو میں جو کچھ ہے اسی کا ہے, اس میں کوئی اس کا سازی نہیں. جو سمراج ایسا محفوظ ہے کہ سب اس کے محتاج اور اس جیوی ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں. بھلا منش کی کیا ہستی ہے کہ اس کے ماننے یا نہ ماننے کے ایسے سمراج سے کوئی ہمیں پہنچ سکے. اس کے سکھ اور سرکشی کی نیتی اپنا کر منش اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. ہاں اپنے وناش کا آیوجن ضرور کر لیتا ہے. اور اربیا کا پرنام یہ ہے کہ منش سدا کے لیے سفل, اسفل اور ورک میں نکل ہو جاتا ہے. ایسے ویکتی کو جان کا سیدھا مارگ کبھی نہیں ملے گا, کیونکہ جو جان سوئے اپنے صرف کی کرتا کو نہ جانے وہ کسی چیز کو صحیح کیسے جان سکتا ہے. اس کی بدھی تھوڑا ٹیڑھے مارگ کو اپنائے گی, کیونکہ جو بدھی جو اپنے بنانے والے کو پہچاننے میں غلطی کرے وہ اور کن چیزوں کو صحیح سمجھ سکتا ہے. یہ ہے کسی کی کہانی ہے. آئیے اچھا یہ بھی دیکھیے کہ اسلام کا طریقہ اپنانے میں کیا فائدہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس لوک میں ہر طرف ایشور کے پربتی کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. جس خدائی آزاد کارخانہ ایک پورن ویوستھا اور ایک قتل قانون کے انترگت چل رہا ہے, یہ اس بات کا ساکھی ہے کہ اس کا بنانے والا چلانے والا ایک آپار شکتی کا مالک ہے, اور وہی شاسک ہے جس کے شاسن کے ورودھ کوئی بھی چیز نہیں اٹھا سکتی. سمپورن وشو کی طرح یہ منش کی پراکرتی بھی یہ ہے کہ اس کا حکم مانے کیونکہ اچیتن روپ کی فراد دن اس کا آدھا پالن کر بھی رہا ہے, کیونکہ اس کے پراکرتک نیموں کا الگھن کر کے وہ جیوت کو رکھ ہی نہیں سکتا. پرنتو اسے اپنے منش کو جان کی جگہ کا سوچ میں سمجھنے کی شکتی اور برے بھلے کی پرکھ دے کر سنکلپ اور انکار میں تھوڑی سی سوتنترتا پردان کر دی ہے. اس سوتنترتا میں منش کی پریکھا ہے, اس کے جان کی پریکھا ہے, اس کی بدھی کی پریکھا ہے, اس کے وویک کی پریکھا ہے اور اس بات کی پریکھا ہے کہ اسے جو سوتنترتا پردان کی گئی ہے اس کو وہ کس پرکار پریوگ دلاتا ہے. اور اس پریکھا میں ان ایک طریقہ اپنانے کو منش کے بعد بھی کیا گیا, کیونکہ بعد اور درست کرنے سے پریکھا کا ادیش بھنگ ہو جاتا ہے. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پریکھا میں پرشن پتر دینے کے پشچات جب آپ کو ایک وشیش اتر دینے کا بعد اور درست کر دیا جائے تو ایسی پریکھا سے کوئی لابھ نہیں ہوگا. آپ کی واستوک یوگتا کا پردرشن اس وقت ہوگا, اسی سمے ہوگا جب کہ آپ کو ہر پرکار کا اتر دینے کا ادھیکار پراپت ہو. جب آپ نے ٹھیک اتر دیا اور سفل ہو گئے بھاوی انتی کا یہ دعا آپ کے لیے کھل جائیں گے, اور جب ٹھیک اتر نے دیا اسفل ہوں گے اور اپنی ایودھیا کا سے اپنی انتی کا راستہ روک لیں گے. ٹھیک اسی پرکار ایشور نے اللہ نے بھی اپنی پریکھا میں منش کو سوتنتر رکھا ہے تاکہ وہ جو طریقہ چاہے اپنائے. اب ایک ویکتی تو وہ ہے جو سوئے اپنی اور وش کی پراکرتی کو نہیں سمجھتا, اپنی سرشتی کرتا اس کے گنوں کو پہچاننے میں بھول کرتا ہے اور ادھیکار کی جو سوتنترتا اسے دی گئی ہے اسے انیشت لابھ اٹھا کر وہ اوجیا اور سرکشی کی نیتی اپناتا ہے. یہ ویکتی جان بدھ اور وویک اور امن کی پریکھا میں اسفل ہو گیا, اس نے خود ثابت کر دیا کہ وہ ہر پرکار سے نیمن شرینی کا ویکتی ہے, اس لیے اس کا وہی پریام ہونا چاہیے جو ابھی آپ نے سنا. یہ جو دوسرا ویکتی ہے اس کے مقابلے میں ایک دوسرا ویکتی ہے جو اس پرکار اس پریکھا میں سفل ہو گیا, اس نے جان اور بدھی سے یہی کام لے کر ایشور کو جانا اور مانا, حالانکہ وہ ایسا کرنے کا بات نہیں کیا گیا تھا. اس نے بھلائی اور برائی کے پرکھنے میں بھی غلطی نہیں کی, سوتنتر روپ سے اس نے بھلائی کو ہی پسند کیا جبکہ برائی کی اور بھی جھکنے کی سوتنترتا اسے پراپت تھی. برائی سے وہ اوم سے جانے کی آزادی پراپت تھی, اس نے اپنی پراکرتی کو سمجھا, اپنے ایشور کو پہچانا اور اوجیا کی سوتنترتا پراپت ہونے پر بھی ایشور کی آجیا پالن کی ریتی کو اپنایا. اس ویکتی کو پریکھا میں اسی کارن سے سفل ملی تو اس نے اپنی بدھی سے ٹھیک کام لیا, آنکھوں سے ٹھیک دیکھا, کانوں سے ٹھیک سنا, مستق سے ٹھیک وچار نردھارت کیا اور دل سے اسی بات پر چلنے کا فیصلہ کیا جو ٹھیک تھا. جو دو انتر ہیں مسلم کے نیتک جیون میں ایشور کا ہے سچاپن اور سچے وارثہ ہوگی. وہ دنیا میں یہ سمجھتے رہے گا کہ سب چیزوں کا مالک اللہ ہے, میرے پاس اور سمست منش کے پاس جو کچھ ہے ایشور ہی کا دیا ہوا ہے, میں کسی چیز کا یہاں تک کہ سوئے اپنے شریر اور شریرک شکتیوں کا بھی مالک نہیں ہے. سب کچھ ایشور کی امانت ہے اور اس امانت کو پریوگ میں لانے کا جو ادھیکار مجھ کو دیا گیا ہے اس کو ایشور اچھا کے انوسار پریوگ میں لانا چاہیے. ایک دن ایشور مجھ سے اپنی جس امانت واپس لے گا اور اس سمے مجھے وہ ایک ایک چیز کا حصہ دینا ہوگا. سنسار سفلتا بھی ایسی ہی ویکتی کے پاس ہوتی ہے, اس سے بڑھ کر سنسار میں کوئی پرتشت اور سجن نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کا سر ایشور کے سوا کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں اور اس کا ہاتھ ایشور کے سوا کسی کے آگے پھیلنے والا نہیں. اپمان ایسے ویکتی کے سمیپ کیسے پھٹک سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر سنسار میں کوئی شکتیشالی نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے من میں ایشور کے سوا کسی کا ڈر اور اس کو ایشور کے سوا کسی سے پرسکار اور انعام کا لوبھ بھی نہیں ہوگا. کون سی شکتی ہے جو ایسے ویکتی کو حق اور سچائی سے وچارت کر سکتی ہے, اور کون سا دھن ہے جو اس کا ایمان مول لے سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر سنسار میں کوئی سمپن اور دھنوان بھی نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ولاس پریہ نہیں, واسناؤں کا بات نہیں, لوبھی اور لالچی نہیں, اپنے اچھے پریشرم سے जो कुछ कमाता है उसी पर उसे संतोष होता है, और गैर कानूनी धन के ढेर भी उसके सामने लगा दिए जाए तो उनको तुच्छ जानकर छुटा देता है। उसके बरकत संसार में कोई प्रेम पात्र और लेख के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि वह हर व्यक्ति का हक अदा करेगा और किसी का हक नहीं मारेगा, हर एक से नेकी करेगा और किसी के साथ बुराई नहीं करेगा, बल्कि हर व्यक्ति की भलाई की कोशिश करेगा और इसके बदले में अपने लिए सुख नहीं चाहेगा। लोगों के दिल आपके आप उसकी ओर खींचेंगे और प्रत्येक व्यक्ति उसका सम्मान और उससे प्रेम करने की कोशिश करेगा। इसके बरकत संसार में कोई विश्वास पात्र भी न होगा, क्योंकि जब न्याय भंग न करेगा, सच्चाई से मुख नहीं मोड़ेगा, वादे का सिक्का और मान लेकर पूरा पावन होगा, तो यह सदन पर ईमानदारी से काम करेगा कि कोई और देखने वाला हो या न हो, परंतु ईश्वर तो सब कुछ देख रहा है। ऐसे व्यक्ति को इज्जत व्यक्ति का और उसकी प्रतिष्ठा का क्या पूछना, कौन है जो उस पर भरोसा न करेगा। एक मुस्लिम के चरित्र के भली भांति समझ लीजिए, एक मुस्लिम के चरित्र को भली भांति समझना है तो आपको विश्वास हो जाएगा। आप अगर एक मुस्लिम के चरित्र को भली भांति समझ लें तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मुस्लिम कभी संसार में अपमानित और पराधीन बनकर नहीं रह सकता, वह सदा प्रभावशाली और स्वागत ही रहेगा, क्योंकि इस्लाम जो गुण उसमें पैदा करता है कोई शक्ति उन पर प्रभुत्ता प्राप्त नहीं कर सकती। इस प्रकार संसार में सम्मान और गौरव का जीवन व्यतीत करने के बाद जब अपने ईश्वर के सामने उपस्थित होगा तो उस पर ईश्वर अपने प्रसाद और दयालुता की वर्षा करेगा, क्योंकि जो अमानत उसे सौंपी गई थी उसका पूरा पूरा हक उसने अदा कर दिया, और जिस परीक्षा ने ईश्वर ने उसको डाला था उसमें वह पूरे पूरे अंक शरीर हो गया। यह अमर सफलता है जो इस लोक के प्रलोक तक निरंतर चली जाती है और कहीं उसका सिलसिला समाप्त नहीं होता। यह इस्लाम है, मानव का स्वाभाविक धर्म। यह किसी जाति और देश से सीमित नहीं, हर युद्ध और हर देश में जो इस ज्ञान रखने वाले और सबके प्रिय लोग होते हैं उन सब का यही धर्म था। ये सब मुस्लिम थे, भले ही उनकी भाषा में उस धर्म का नाम इस्लाम रहा हो या कोई और धर्म रहा हो। अब आइए आपको हम बताते हैं ईमान क्या चीज है। इस्लाम तो वास्तव में पालन करता कि आपका पालन का नाम है। अब हम बताना चाहते हैं कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की आज्ञा का पालन उस समय तक नहीं कर सकता जब वो उसे कुछ बातों का ज्ञान न हो, उसको कुछ बातों का इल्म न हो, और वह ज्ञान विश्वास खेत की सीमा तक पहुंचा हुआ न हो। सबसे पहले तो मनुष्य को ईश्वर की सत्ता पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जब उसे यह विश्वास न हो तो ईश्वर है तो वह उसका आज्ञा पालन कैसे करेगा। उसके साथ ईश्वरीय गुणों का ज्ञान भी आवश्यक है। जिस व्यक्ति को यह मालूम न हो कि ईश्वर एक है और प्रभुत्व में कोई उसका साधी नहीं, वह दूसरे के सामने सिर झुकाने और हाथ चलाने से कैसे सीख सकता है। जिस व्यक्ति को इस बात का विश्वास न हो कि ईश्वर सब कुछ देखने और सुनने वाला है और वह हर चीज की खबर रखता है, वह अपने आप को ईश्वर की अवज्ञा से कैसे रोक सकता है। इस बात पर जब आप विचार करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि विचार और संभाव और इस्लाम के सीधे मार्ग पर चलने के लिए मनुष्य के जिन गुणों का होना आवश्यक है, वे गुण उस समय तक उसे नहीं आ सकते जब तक कि उसे इस गुणों का ठीक ठीक ज्ञान न हो, और यह ज्ञान केवल ज्ञान लेने तक सीमित न रहे बल्कि उसे विश्वास के साथ जान लेना चाहिए, ताकि मनुष्य का मन उसके ज्ञान विरोधी विचारों से और उसका जीवन उसके ज्ञान के विरोध आचार विचरण से बच सके। उसके बाद मनुष्य को यह भी मालूम होना चाहिए ईश्वरी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने का सही तरीका क्या है, किस बात को ईश्वर पसंद करता है ताकि उसे अपनाया जाए, और किस बात को अल्लाह नापसंद करता है ताकि उसे बचा जा सके। उसके लिए जरूरी है कि मनुष्य अल्लाह के कामों और उसके विधान से भली भांति परिचित हो, उसके विषय में उसे पूरा विश्वास हो कि यही अल्लाह का कानून और विधान है, और इसी का अनुसरण करने से अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि यदि उसे इसका ज्ञान भी न हो तो वह पालन किस चीज का करेगा, और यदि ज्ञान तो हो परंतु पूरा विश्वास न हो या मन में यह भावना बनी हो कि इस कानून और विधान के अतिरिक्त दूसरे कानून और विधान भी ठीक ही है या हो सकते हैं, तो उसकी भली भांति पालन कैसे कर सकता है। फिर मनुष्य को इसका ज्ञान भी होना चाहिए कि ईश्वर इच्छा के अनुसार न चले और उसके पसंद किए गए नियम या विधान का पालन न करने का परिणाम क्या है और उसके आज्ञा पालन का पुरस्कार क्या है। इसलिए जरूरी है कि आखिरत यानी परलोक जीवन का ईश्वर के न्यायालय ईश्वर के न्यायालय में पेश होने का, उसके अदालत में पेश होने का, अविज्ञा दंड पाने का और आज्ञा पालन और आज्ञा पालन पर पुरस्कार पाने का पूरा ज्ञान और विश्वास है। जो व्यक्ति आखिरत के जीवन के अपरिचित है वह आज्ञा पालन और अवज्ञा दोनों को निष्फल समझता है। उसका विचार तो यह है कि अंत में आज्ञा पालन करने वाला और न करने वाला दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों मृत्यु हो जाएंगे। फिर उससे कैसे आशा की जा सकती है कि वह आज्ञा पालन की पाबंदियों और तकलीफों को उठाना स्वीकार कर ले और उन गुनाहों से बचे जिनसे इस संसार में कोई हानि पहुँचने का उसको भय नहीं है। ऐसे विश्वास के बाद में अर्थात अल्लाह का आज्ञाकारी और फरमा बरदार हो जाता है। ईमान की परिभाषा से आप सब समझ सकते हैं कि ईमान के बिना कोई मनुष्य मुस्लिम नहीं हो सकता। इस्लाम और ईमान में वही संबंध है जो वृक्ष और बीज में होता है। बीज के बिना वृक्ष उग नहीं सकता। हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि बीज भूमि में बोया जाए परंतु भूमि खराब होने के कारण या जलवायु अच्छी प्राप्त न होने के कारण पेड़ पौधे दो सीखे। ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी से ईमान ही न रखता है तो यह किसी तरह संभव नहीं मुझे है। हाँ, यह आपसे संभव है कि किसी के दिल में ईमान हो परंतु अपने संकल्प की दुर्बलता या अपूर्ण शिक्षा दीक्षा और विसंगित के प्रभाव को वह पूरा और पक्का मुस्लिम न हो। ईमान और इस्लाम की दृष्टि के समक्ष मनुष्यों की चार श्रेणी है, चार दर्जे हैं। जो ईमान रखते हैं और उनका ईमान उन्हें ईश्वर के आदेशों का पूर्ण रूप से अनुवर्ता बना देता है। जो बात ईश्वर को अप्रिय है वह उससे इस तरह बचती है जैसे कोई व्यक्ति आंख को हाथ लगाने से बचता है, और जो बात ईश्वर को प्रिय है उसे वह ऐसे शौक से करते हैं जैसे कोई व्यक्ति धर्मपार्जन के लिए शौक से काम करता है। जो वास्तविक व्यक्ति है दूसरा वह है जो ईमान को रखते हैं परंतु उनके ईमान में इतना बल नहीं कि उन्हें पूर्ण रूप से अल्लाह का आज्ञाकारी बना दे। ये अगर के निम्न श्रेणी के लोग हैं परंतु फिर भी मुस्लिम ही है। जो यदि ईश्वरीय आदेशों को की नाफरमानी करते हैं तो अपने अपराध की दृष्टि से दंड के भागी हैं परंतु उनकी हैसियत अपराधी की है जो द्रोही की नहीं है। इसलिए कि यह सम्राट को इस सम्राट को सम्राट मानते हैं और उसके कानून के कानून होना स्वीकार करते हैं। तीसरा वह है जो ईमान नहीं रखता परंतु देखने में जो ऐसे ऐसा काम करता है जो ईश्वरीय कानून के अनुकूल दिखाई देता है। यह वास्तव में विद्रोही है। इसका कुछ भी नहीं है। इनकी मिसाल ऐसे व्यक्ति जैसी है तो फिर वो लोग हैं जो ईमान भी नहीं रखते और कर्म की दृष्टि से भी दुष्ट और दुराचारी है। ये उत्तरी के लोग हैं जो दाही और विद्रोही कहलाते हैं क्योंकि ये विद्रोही भी हैं और दीवार पैदा करने वाले भी। मानवीय श्रेणी के इस वर्गीकरण से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ईमान वास्तव में मानवीय सफलता का आधार है। इस्लाम चाहे वो पूर्ण हो या अपूर्ण केवल ईमान रूपी बीज से पैदा होता है। जहाँ ईमान न होगा वहाँ ईमान की जगह कुफ्र होगा जिसका दूसरा अर्थ ईश्वर के प्रति विद्रोह है। क्या है वो विद्रोह? ऊंचे चक्र का हो या नीचे चक्र, ईश्वरीय आज्ञा पालन के लिए ईमान की आवश्यकता और उसकी जरूरत आप ये जान लिया। अब प्रश्न ये है कि ईश्वर के गुण और उसके इच्छित कानून परलोक के जीवन के संबंध में ज्ञान और ऐसा ज्ञान जिस पर विश्वास किया जा सके कैसे प्राप्त हो सकता है? हम आपको बता चुके हैं तो विश्व में सर्वत्र ईश्वर की कारीगरी की निशानियां मौजूद हैं, मौजूद हैं जो इस बात की साक्षी है कि इस कारखाने को एक ही कारीगर ने बनाया है और वही उसको चला रहा है। उन निशानियों में सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की समस्त गुणों की छवि दिखाई पड़ती है। उसकी विजन, उसका ज्ञान, उसका सामर्थ्य, उसकी दयालुता, उसकी पालन क्रिया, उसका प्रकोप, तात्पर्य यह है कि कौन सा गुण है जिसकी गणना उसके कर्मों से, उसके कामों से व्यक्त न होती है, परंतु मनुष्य की बुद्धि और उसकी योग्यता से इन चीजों को देखने में बहुत ज्यादा जरूरी है। ये समस्त निशानियाँ आंखों के सामने मौजूद है, परंतु फिर भी किसी ने कहा ईश्वर दो है, किसी ने कहा तीन है, किसी ने कहा अनगिनत है, किसी ने अनगिनत ईश्वर मान लिए, किसी ने के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा एक वर्षा का पर्व है, एक वायु का पर्व है, एक अग्नि का ईश्वर है और दुनिया में जितने भी सिस्टम चल रहे हैं हर एक का एक अलग अलग ईश्वर। बेहतर ये है कि एक एक शक्ति के अलग अलग ईश्वर पाए जाते हैं और एक ईश्वर इन सब का नायक है। इस तरह ईश्वर की सत्ता और उसके गुणों को समझने में लोगों की बुद्धि में बहुत धोखे खाए हैं जिनको बयान करने का यहाँ मौका नहीं है। आखिरत परलोक के जीवन के विषय में भी लोगों ने बहुत से सत्य और असत्य विचार प्रकट किए। किसी ने कहा कि मनुष्य मर कर मिट्टी हो जाएगा, फिर उसके पश्चात कोई जीवन नहीं। किसी ने कहा कि इसी दुनिया के अंदर हम आए हैं और यही पर खत्म हो जाएंगे। किसी ने कहा कि मनुष्य बार बार इस लोक में जन्म लेगा और अपने कर्मों के अनुसार दंड या पुरस्कार पाएगा। किसी ने और बातें कही, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा और इस तरह से दुनिया के अंदर बेशुमार देवताओं का प्रचलन हो गया। दुनिया के अंदर ईश्वर को छोड़कर लोग शिव की तरह चले गए। यद्यपि बुद्धि और ज्ञान की पूर्ण रूप से परीक्षा तो उसी प्रकार हो सकती है जब मनुष्य बिना किसी मार्गदर्शन के छोड़ दिया जाए और फिर अपनी कोशिश और योग्यता के सत्य और सच्चाई को भूल जाए। परंतु ईश्वर ने अपने बंदों को ऐसी कठिन परीक्षा में नहीं डाला, उसने अपनी दया से स्वयं मनुष्य में ऐसे मनुष्य पैदा किए जिनको अपने गुणों का अर्थात ज्ञान दिया। वह तरीका भी बताया जिससे मनुष्य संसार में ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन यापन कर सकता है। परलोक के जीवन के संबंध में भी अर्थात ज्ञान प्रदान किया और ये आदेश दिया कि दूसरे मनुष्य तक यह ज्ञान पहुंचा दें। ये अल्लाह के पैगंबर संदेश का है, रसूल है, जिस साधन से अल्लाह ने उनको ज्ञान दिया है उनका नाम वही, जिसको अंग्रेजी में रिवीलेशन, हिंदी में देवी प्रकाशना कहते हैं, और जिस ग्रंथ में उन्हें यह ज्ञान दिया गया है उसको ईश्वरीय ग्रंथ और अल्लाह का कलाम कहते हैं। अब मनुष्य और उसकी योग्यता की परीक्षा इसलिए है कि वह पैगंबर के पवित्र जीवन को देख ले और उसकी शिक्षा पर विचार करने के बाद उस पर ईमान लाता है या नहीं। अगर वह न्यायशील और सत्यप्रिय है तो सच्ची बात और सच्चे मनुष्य की शिक्षा को मान लेगा और परीक्षा में सफल हो जाएगा। और अगर यदि उसने न माना तो इनकार का अर्थ यह होगा कि उसने सच और सच्चाई को समझने और स्वीकार करने की क्षमता खो दी है। यह इनकार उसको परीक्षा में असफल कर देगा और ईश्वर और उसके कानून और समलोक के जीवन के विषय में वह सभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेगा। देखिए, जब आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं होता तो आप ज्ञान वाले व्यक्ति की खोज करते हैं और उसके आदेश के अनुसार आचरण करते हैं। आप बीमार होते हैं तो खुद अपना इलाज नहीं कर लेते, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर का प्रमाणित होना, उसका अनुभवी होना, उसके हाथ से बहुत से रोगियों का अच्छा होना, ये ऐसी बातें हैं जिनके कारण आप बीमार ले आते हैं। तो उत्तम इलाज के लिए जिस योग्यता की आवश्यकता है वो उस डॉक्टर के अंदर पाई जाती है। इसी ईमान और विश्वास के कारण वह जिस दवा को जिस ढंग से सेवन करने को कहता है, इस्तेमाल करने को कहता है, उसका आप इस्तेमाल करते हैं और जिस जिस चीज के बचने को हुक्म देता है उसको प्रवेश करते हैं। इसी तरह कानून के मामले में आप वकील पर ईमान लाते हैं और उसके आदेशों का पालन करते हैं। शिक्षा के विषय में अध्यापक पर ईमान लाते हैं और वह जो कुछ आपको बताता है उसको मानते चले जाते हैं। आपको कहीं जाना हो, रास्ता मालूम न हो, तो आप किसी जानदार व्यक्ति पर ईमान लाते हैं या नहीं, और जो मार्ग वो आपको बताता है उसी पर आप चलते हैं या नहीं। तात्पर्य यह है कि दुनिया के हर मामले में आपको जानकारी और ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी जानने वाले आदमी पर ईमान लाना पड़ता है और उसके आदेशों का पालन करना पड़ता है। उसी का नाम क्रोध पर ईमान, गैर पर ईमान। क्रोध पर ईमान का अर्थ यह है कि जो कुछ आपको मालूम नहीं उसका ज्ञान आप जानने वालों से प्राप्त करें और उस पर विश्वास कर लें। ईश्वर की सत्ता और गुणों से आप परिचित नहीं है, आपको यह भी मालूम नहीं कि उसके फरिश्ते उसके आदेश के अंतर्गत संपूर्ण विश्व का काम कर रहे हैं और आपको हर तरफ से घेरे हुए। आपको यह भी खबर नहीं कि ईश्वर इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने का तरीका क्या है, साधन क्या है। आपको आखिरत और परलोक के जीवन का भी सही हाल मालूम नहीं। इन सब बातों का ज्ञान आपको एक ऐसे मनुष्य के द्वारा प्राप्त होता है जिसकी सच्चाई सत्यवादिता ईश्वर है, पवित्रतम जीवन और अच्छी बातों को देखकर आप मानते हैं कि वह जो कुछ कहता है सच कहता है और उसकी सब बातें विश्वास करने के लायक है। यह परोक्ष ईमान है। अल्लाह का आज्ञा पालन और उसके इच्छा के अनुसार आचरण करने के लिए परोक्ष ईमान आवश्यक है, क्योंकि पैगंबर के सिवा किसी और साधन से आपको अर्थात ज्ञान नहीं प्राप्त होता और आप ज्ञान के बिना आप इस्लाम के तरीके को ठीक ठीक चल नहीं सकते। अब हम आपको यह बताना चाहेंगे कि पैगंबरी और नबूवत की वास्तविकता क्या है और पैगंबरों को कैसे पहचाना जाए, अल्लाह के संदेशताओं को कैसे पहचाना जाए। आप देखते हैं कि संसार में मनुष्य को जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है अल्लाह ने उन सबका प्रबंध स्वयं ही कर दिया है। बच्चा जब पैदा होता है तो देख के कितनी सामग्री उसे देकर संसार में भेजा जाता है। देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, सूंघने और सांस लेने के लिए नाक, स्पर्श ज्ञान के लिए संपूर्ण शरीर, उसके अंदर अनुभव शक्ति, चलने के लिए पांव, काम करने के लिए हाथ, सोचने के लिए मस्तिष्क और ऐसी ही अनगिनत दूसरी चीजों का जो पहले से उसकी सब जरूरतों का ध्यान रखते हुए उसकी छोटी से उसके छोटे से शरीर के अंदर लपेट करके सारी चीजें रखी गई है। जिस जगह दुनिया में कदम रखता है تو جیون بتانے کے لیے کتنی سامگری اس سے ملتی ہے جس کی آپ گننا بھی نہیں کر سکتے. وایو ہے, پرکاش ہے, تاپ ہے, جل ہے, پرتھوی ہے, ماں کے سن میں پہلے سے دور موجود ہے, ماتا پتا سمبندھی یہاں تک کہ دوسرے لوگوں کے دلوں کے اندر اس کے اوپر کی پیار اور ممتا پیدا کر دی گئی ہے, جس سے اس کا پالن پوشن ہوتا ہے. پھر جتنا جتنا وہ بڑھتا جاتا ہے اس کی آوشیکتاؤں کی پورتی کے لیے ہر پرکار کی سامگری اس کو ملتی جاتی ہے. اور ایسا لگتا ہے مانو پرتھوی اور آکاش کی سمست شکتیاں اس کے پالن پوشن اور سیوا کے لیے کار کر رہی ہیں. اس کے بعد آگے بڑھیے, دنیا کے کام کرنے کے لیے جتنی یوگتاؤں کی ضرورت ہے وہ سب منشی کو دی گئی ہے. شریر کی شکتی, سمجھ بھی, ایسی بہت سی یوگتائیں تھوڑی یا بہت ہر منشی کے اندر پائی جاتی ہیں. پرنتو یہاں اللہ نے یہ پربند کیا ہے کہ سمست یوگتاؤں سب منشی کو سمان روپ سے نہیں دی گئی. جب ایسا ہوتا تو کسی کا محتاج کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوتا, نہ کوئی کسی کی پرواہ کرتا. اس لیے ایشور نے سمست منشی کی ساموہک آوشیکتاؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے سمست یوگتائیں پیدا تو منشی سے کی, پرنتو کس طرح کے کسی کو ایک یوگتا ادھک دے گی اور دوسرے کو دوسری یوگتا دے گی, کسی کے اندر ایک پرانی زیادہ دے گی دوسرے کے اندر کم کرتی. آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ شریرک پریشرم کی شکتیاں دوسروں سے ادھک لے کر آتے ہیں, کچھ لوگوں میں کسی وشیش کلا یا پروفیشن کی شرمجات میں لیتا ہوتی ہے جس سے دوسرے ونچت ہوتے ہیں, اور کچھ لوگوں میں بدھی کی تیزی اور بدھی شکتی دوسروں سے ادھک ہوتی ہے, کچھ جمنچی سے تہناری ہوتی ہیں, کچھ وہ پرشاسن کی وشیش یوگتا ہوتی ہے, کچھ بھاشن کی اچھاروں شکتی لے کر پیدا ہوتی ہیں, کچھ میں لکھنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے. کوئی ویکتی ایسا پیدا ہوتا ہے کہ اس کی بدھی گنت میں ادھک کام کرتی ہے, جہاں تک کہ اس کے بڑے سے بڑے جٹل پرشنوں کو اس طرح حل کر دیتا ہے کہ دوسروں کی بدھی یہاں تک نہیں پہنچتی. ایک دوسرا ویکتی ایسا ہوتا ہے کہ جو دوسری چیزوں کا آوشکار کرتا ہے اور اس کے آوشکاروں کو دیکھ کر سنسار چکت رہ جاتی. ایک اور ویکتی ایسا انوتم قانونی دماغ لے کر آتا ہے کہ قانون کی جو شکشن اور مرد کی باتیں برسوں تک وچار کرنے پر بھی دوسرے کی سمجھ میں نہیں آتی, اس کی درشٹی اپنے آپ وہاں تک پہنچ جاتی ہے. ایشور کی اس بین پر بھی وچار کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مانو سنسکرتی کے لیے جن یوگتاؤں کی آوشیکتا ہے یا ادھک ہوتی ہے وہ ادھک منشیوں میں پیدا کی جاتی ہے, اور جن کی آوشیکتا جتنی کم ہوتی ہے اتنی ہی کم منشیوں میں پیدا کی جاتی ہے. پہلی کا بھی پیدا ہوتی ہے کسان اور بڑھیا لوہار ایسے دوسرے کاموں کے آدمی ابھی پیدا ہوتی ہیں, پرنتو جان سمبندھی اور بدھی شکتیاں رکھنے والے راجنیتک اور سیناپتی سمبندھی یوگتاؤں کے ادھیکاری کم پیدا ہوتے ہیں. پھر وہ لوگ اور بھی کام ملتے ہیں جو کسی وشیش ودیا اور کلا میں اسادھارن یوگتا کے ادھیکاری ہیں, کیونکہ ان کے مہان کارج کے کارن شتابدیوں تک لوگوں کو ان جیسے کشل جانکاروں کی آوشیکتا نہیں رہتی. اب سوچنا چاہیے کہ سنسار میں مانو جیون کو سفل بنانے کے لیے کیول یہی ایک آوشیکتا تو نہیں کہ لوگوں کو انجینئر, حساب کا, ویگیانک, قانون کا, راجنیتک, ارتھشاستر اور وبھن ویوستھا کی یوگتا رکھنے کے والے لوگ ہی پیدا ہوں. ان سب سے بڑھ کر ایک اور آوشیکتا بھی تو ہے, اور وجہ ہے کہ کوئی ایسا ہو جو لوگوں کو ایشور کا مارگ بتائے, ایشور کا راستہ بتائے, ایشور تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو صحیح مارگ بتائے. دوسرے لوگ تو صرف یہ بتانے والے ہیں کہ اس سنسار میں منشیہ نے کیا اور اس کو کس پرکار پریوگ میں لایا جا سکتا ہے, پرنتو کوئی یہ بتانے والا بھی تو ہونا چاہیے کہ منشیہ کوئی کس لیے ہے, خود کس لیے بنایا گیا ہے, منشیہ کو سنسار میں یہ سب سامگری کس لیے دی ہے اور اس دینے والے کی اچھا کیا ہے, تاکہ منشیہ اسی کے انوسار संसार में जीवन व्यतीत करके निश्चित और सफलता प्राप्त करते। यह मनुष्य की वास्तविक और सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे बड़ी आवश्यकता है। और बुद्धि अमान्य की इनकार करती है तो जिस ईश्वर ने हमारी छोटी से छोटी जरूरतों को पूरा करने का प्रबंध किया है उसने ऐसे महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति में असावधानी से काम लिया नहीं, ऐसा अर्जुन नहीं। ईश्वर ने जिस प्रकार एक एक विद्या एक और एक एक विद्या विज्ञान की विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति को पैदा किए हैं उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति भी पैदा किए हैं जिनने ईश्वर को पहचानने की उत्तम योग्यता दी। उसने उन्हें धर्म जिसको दीन कहते हैं, अखलाक और शरीयत का ज्ञान अपने पास से दिया और उन्हें इस सेवा कार्य पर नियुक्त किया कि दूसरे लोगों को इन चीजों की शिक्षा दें। यही वो लोग हैं जिनको हमारी हमारे भाषा में हमारी जबान में नबी या रसूल या हिंदी में कृष्णदूत या संदेशता कहा जाता है। अब देख रहे हैं कि हम पैगंबरों को कैसे पहचाने। तो जिस प्रकार दूसरी विद्याओं और कलाओं के कुशल व्यक्ति एक विशेष वृत्ति और एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति लेकर पैदा होते हैं इसी प्रकार पैगंबर भी एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति लेकर आते हैं। एक जन्मजात कवि की कविताओं को सुनते ही हमको मालूम हो जाता है कि यह साफ की विशेष प्रतिमा लेकर पैदा हुआ है क्योंकि दूसरे लोग चाहे कितनी ही कोशिश करें उस जैसे कदरचना नहीं कर सकते। इसी प्रकार एक जन्मजात लेखक एक जन्म सिद्ध आविष्कारक एक जन्मजात नेता भी अपने महान कार्य से सशक्त रूप में पैदा नहीं आता क्योंकि उनमें से हर एक अपने काम में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करता है जो दूसरों में नहीं होती। ऐसी ही हाल पैगंबरों का भी है। उसके मन में वो बातें आती है जो दूसरे सोच भी नहीं सकते। ऐसे विषयों का वर्णन करता है जिनका उसके सिवा किसी को वर्णन नहीं कर सकता। सुप्त दृष्टि ऐसी सूक्ष्म बातों तक पहुंच जाती है जिन तक दूसरों की दृष्टि दर्शन के सोच विचार कदापि नहीं पहुंच सकते। वह जो कुछ कहता है हमारी बुद्धि को सुरक्षित हो हमारा मन गवाही देता है और उसे ऐसा ही होना चाहिए। संसारिक अनुभव और विश्व के निरीक्षणों से उसकी एक एक बात सत्य सिद्ध होती है। परंतु यदि हम स्वयं इस तरह की बात कहना चाहें तो नहीं कह सकते। फिर उसकी मनोवृत्ति इतनी पवित्र होती है कि वह हर मामले में शक्ति पीढ़ी और सजनता की नीति अपनाता है। वह कभी कोई असत्य बात नहीं कहता, कोई बुरा काम नहीं करता, सदैव सदाचार और सच्चाई की शिक्षा देता है और जो कुछ दूसरों से कहता है उस सत्य चल कर दिखाता है। उसके जीवन में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि वह जो कुछ कहे उसके विरुद्ध आचरण करे। तो उसके कथन और व्यवहार में कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता। वह दूसरों के हित के लिए स्वयं हानि कहता और अपने हित के लिए किसी को हानि नहीं कहता। उसका संपूर्ण जीवन सच्चाई सुजनता सुशीलता पवित्रता उच्च विचार और सर्वस्व मानवता का आदर्श होगा जिसमें झूलने से भी कोई दोष नहीं गिर सकता। इन्हीं चीजों को देख कर साफ पहचान लिया जाता है यह व्यक्ति ईश्वर का सच्चा पैगंबर है, उसका संदेश क्या है। अब ये देखना चाहिए कि पैगंबर को आज्ञा पालन करना चाहिए तो किस तरह करना चाहिए। जब ये मालूम हो गया तो ये सच्चा पैगंबर है तो उसको मानना, उसको आज्ञा पालन करना और उसके तरीकों का अनुपालन करना जरूरी है। यह बात बुद्धिमत्ता के स्वर का प्रतिकूल है कि आप एक व्यक्ति के पैगंबर होना स्वीकार भी करें और फिर उसकी बात भी न माने। क्योंकि पैगंबर मानने का अर्थ यह है कि आपने मान लिया कि वह जो कुछ कह रहा है ईश्वर की ओर से कह रहा है और जो कुछ कर रहा है ईश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहा है। अब आप جو کچھ اس کے وروڈ دکھائیں گے یا کریں گے وہ ایشور کے وروڈ ہوگا, اور جو بات ایشور کے وروڈ ہوگا وہ کبھی سچ اور نیاپور نہیں ہو سکتی. اس لیے کسی کا پیغمبر ماننے سے یہ بات آپ کو آپ ضروری ہو جاتی ہے تو اس کی بات کو نرباد مان لیا جائے اور اس کے حکم کے آگے پھر جھکا دیا جائے, چاہے اس کا آنترک اس کا لاب آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اس کی باتیں آپ کی عقل کی اندر آئے یا نہ آئے. جو بات پیغمبر کی اور سے ہے اس کا پیغمبر کی اور سے ہونا ہی اس بات کا فرمان ہے کہ وہ سچی ہے. جب آپ کی سمجھ میں کسی بات کا پرویژن نہیں آتا تو اس کا ارتھ یہ نہیں کہ اس بات میں کوئی دوش ہے. جس ویکتی کو کسی ودیا یا کلا میں سفلتا پراپت نہیں ہے جب اس کا مقصد نہیں سمجھ سکتا, پرنتو وہ کتنا مورکھ ہوگا یعنی وہ کسی ودیا کے سمرتھ کی بات کیول اس لیے نہ مانے کہ اس کی سمجھ میں وہ بات نہیں آتی. دیکھیے سنسار کے پرتیک کارج میں اس کے جانکار کی آوشیکتا ہوتی ہے, اور جانکار ویکتی کی سمتی لینے کے پشچات ہی اس کے اوپر پورا بھروسہ کیا جاتا ہے اور اس کے کارج میں ہستکشیپ نہیں کیا جاتا, کیونکہ سب لوگ سب کاموں کے وشیشک نہیں ہو سکتے اور نہ دنیا بھر کی سب چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. آپ کو اپنی سمجھ بدھی اور سکوت کا اپیوگ صرف اس بات میں کرنا چاہیے کہ ایک اچھے سے اچھا سے سب ہو جائے. جب کسی کے بارے میں آپ کو وشواس ہو جائے کہ وہ سب سے اچھا جانکار ہے اس پر آپ کو پورا بھروسہ کرنا چاہیے. پھر اس کے کاموں میں ہستکشیپ کرنا اور ایک ایک بات کے بارے میں یہ کہنا کہ پہلے ہمیں سمجھا دو, نہیں تو ہم نہیں مانیں گے, بدھی مانیں گے, بلکہ سرفا اور رشتہ. کسی وکیل کو مقدمہ سونپنے کے بعد آپ ایسے وعد وواد کریں گے تو آپ کو اپنے دفتر سے نکال دے گا. کسی ڈاکٹر سے آپ اس کے کام کے اندر آدیش دیں گے اور اس کے وشے میں کارن جاننا چاہیں گے تو وہ آپ کا علاج کر دیں گے. ایسے ہی معاملہ گھر نکال دیں گے. آپ کو ایشور جان پراپت کرنے کی آوشیکتا ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایشوری اچھا کے انوسار جیون ویتیت کرنے کا طریقہ کیا ہے. آپ کے پاس کیوں ان چیزوں کے معلوم کرنے کا کوئی سادھن نہیں جب آپ کا تو یہ جان ہے, تب آپ کا یہ کرتویہ ہے کہ ایشور کے سچے پیغمبر کی تلاش کریں. اس تلاش میں آپ کو اصلیت بدھی اور سمجھ بوجھ کے کام لینا چاہیے, کیونکہ جب آپ نے کسی ایسے ویکتی کو پیغمبر سمجھ لیا جو پیغمبر نہیں تو بس آپ کو اسکت مار کر لگا دے گا. پرنتو جب آپ کو بھلی بھانتی جانچ پڑتال کرنے کے پشچات یہ وشواس ہو جائے کہ اموک ویکتی ایشور کا سچا پیغمبر ہے تو اس پر آپ کو پورن روپ سے وشواس کرنا چاہیے اور اس کے پرتیک آدیش کا پالن کرنا چاہیے. جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اسلام کا سچا اور سیدھا مارگ یہی ہے جو ایشور کی اور سے اس کا پیغمبر بتائے, تو یہ بات آپ کیوں سمجھ سکتے ہیں کہ پیغمبر کا ایمان لانا اور اس کا آگیا پالن کرنا اور انوسرن کرنا سمست منشیوں کے لیے کتنا آسان ہے. اور جو ویکتی پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ کر جو اپنی بدھی سے کوئی طریقہ نکالتا ہے, کوئی طریقہ اپناتا ہے, وہ مشکل مارگ بھرتا ہے, گمراہ. اس معاملے میں لوگ وچتر غلطیاں کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیغمبر کی سچائی کو تو مانتے ہیں پرنتو نہ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں نہ اس کے آدیشوں کا پالن کرتے ہیں. یہ کیول کافر ہی نہیں مورکھ ہی ہے, کیونکہ پیغمبر کو سچا ماننے کے پشچات اس کے آدیشوں کا پالن نہ کرنا اس کا ارتھ یہ ہے کہ منش جان بوجھ کر اسکت کا راستہ اپناتا ہے. اس سے یہ بھی اسپشٹ ہو جاتا ہے کہ اس سے بڑھ کر مورکھتا کی بات نہیں ہوتی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پیغمبر کے پیچھے چلنے کی آوشیکتا نہیں ہے, ہم سو اپنی بدھی سے سچ مار کا جان پراپت کر لیں گے. یہ بھی بڑی بھول ہے. آپ نے ریکھا گنیش کو देखा है, उसकी शिक्षा प्राप्त की है और आप ये जानते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधे रेखा सीधी रेखा एक ही हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती। उसकी सिवा जितनी भी रेखाएं खींच जाएंगी वो सब या तो चोरी होंगी या उस दूसरे बिंदु तक नहीं पहुंचेंगी। ऐसी ही हालत सत्य मार्ग की भी है, जिसको इस्लाम की भाषा में सिराते मुस्तकीम सीधा मार्ग या सरल मार्ग कहा जाता है। यह मार्ग मनुष्य से आरंभ होकर ईश्वर तक जाता है और रेखा बनने के इसी नियम के अनुसार यह भी एक ही मार्ग हो सकता है। इसके सिवा जितने मार्ग भी होंगे या तो सब चोरी होंगे या ईश्वर तक नहीं पहुँचे। अब विचार कीजिए कि जो सीधा मार्ग है वो तो पैगंबर ने बता दिया और उसके खिलाफ कोई दूसरा मार्ग सिराते मुस्तकीम है ही नहीं, सरल मार्ग है ही नहीं, सीधा मार्ग है ही नहीं। इस मार्ग को छोड़कर इसलिए इस मार्ग को छोड़कर जो व्यक्ति कोई सही रास्ता तलाश करेगा उसको दो सूरतों में से कोई एक सूरत जरूर देखा होगी। या तो उसको ईश्वर तक पहुंचने का कोई मार्ग मिलेगा ही नहीं, या यदि मिला भी तो बहुत देर का रास्ता मिलेगा, सरल रेखा न होगी बल्कि वो टेढ़ी रेखा होगी। पहली सूरत में तो उसकी सवारी जाहिर है, यही दूसरी सूरत उसकी भी निष्ठापुर होने में संदेह नहीं किया। एक बुद्धिहीन कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए टेढ़ा रेखा छोड़कर सरल रेखा ही अपना कर फिर उस मनुष्य को आप क्या कहेंगे जिसको अल्लाह का एक नीक बंदा सीधा मार्ग बताए और वह कहे कि नहीं मैं तेरे बताए मार्ग के ऊपर नहीं चलूंगा, मैं तो अपनी ही समझ के मुताबिक काम करूंगा और अपने तेरे रास्ते के ऊपर चलूंगा। उसका नतीजा यह होगा कि वो तेरे मार्ग में भटक भटक कर अंतिम लक्ष्य की खोज नहीं लगा पाएगा और जो गुमराह हो जाएगा। यह तो वो बात है जिस पर सही सोच विचार में हर व्यक्ति समझ सकता है, परंतु यदि आप अधिक सोच विचार करके देखेंगे आपको मालूम होगा कि जो व्यक्ति पैगंबर का ईमान लाने से इनकार करते हैं उनको ईश्वर तक पहुँचने का कोई मार्ग मिल ही नहीं सकता और मिलता भी नहीं, न तेरा न तीरा। इसका कारण यह है कि जो व्यक्ति सच्चे आदमी की बात मानने से इनकार करता है उसके मस्तिष्क में अब से कोई ऐसा विकार होता है जिसके कारण वो सच्चाई से नहीं जोड़ता और गलत रास्ते को अपनाता है। या तो इसकी समझ बूझने दोष होता है या उसके मन में अभिमान होता है या उसके स्वभाव में ऐसी कठिनता होती है कि वह नेकी और सच्चाई की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होता, या वो बाप दादा के अंधानुसार में ग्रस्त होता है और जो असत्य बातें परखा के रूप में उसके पास पहले से चली आ रही हैं उनके विरुद्ध कोई बात मानने के लिए और सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो यह वजह हो सकती है कि वो अपनी इच्छा का दास है और पैगंबर की शिक्षा को मानने से इसलिए इनकार करता है कि उसको मान लेने के बाद बापों और अवैध बापों की स्वतंत्रता शेष नहीं रहती। ये सब ऐसे कारण हैं कि यदि उनमें से कोई एक कारण भी किसी व्यक्ति के अंदर पाया जाता है तो इसको ईश्वरीय मार्ग मिलना असंभव है, और यदि कोई कारण भी न पाया जाता है तो यह असंभव नहीं कि एक सच्चा निष्पक्ष और अकलमंद मनुष्य एक सच्चे पैगंबर की शिक्षा को स्वीकार करने से इनकार करे। सबसे बड़ी बात यह है कि पैगंबर ईश्वर की ओर से भेजा हुआ होता है और ईश्वर ही का यह आदेश है कि उसकी कड़ी मान लाओ और इसका आज्ञा पालन करो। अब जो कोई पैगंबर पर ईमान नहीं लाता वो ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करता है, उसका बागी हो जाता है, ईश्वर के खिलाफ रास्ते चुनकर चला जाता है। आप इसको यूँ समझिए कि आप जिस राज की प्रजा है उसकी ओर से जो अधिकारी भी नियुक्त होगा आपको उसके आदेशों का पालन करना होगा। यदि आप उसके अधिकारों को नहीं मानेंगे या उसके आहकाम से पालन करने से इनकार करेंगे, वो जो कहता है उसकी बात के ऊपर नहीं चलेंगे, तो इसका अर्थ यह होगा कि आपने उसको राज के विरुद्ध विद्रोह किया है, बगावत की है। राज को मानने और उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी तो मानने से आपने इनकार कर दिया है। राज को मानना और उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी को न मानना ये बजाय खुद विरोध की बात है। ऐसी ही साथ ईश्वर और उसके भेजे हुए पैगंबर के लिए ईश्वर समस्त मनुष्य का वास्तविक सम्राट है। जिस व्यक्ति को उसने मनुष्य के मार्गदर्शन और गाइडेंस के लिए भेजा और जिसके अनुदर्शन की आज्ञा भी है, हर मनुष्य का कर्तव्य है कि उसके पैगंबर माने और दूसरी चीजों का अनुकरण छोड़कर केवल किसी के पीछे चले। उसके मुंह जोड़ने वाला प्रत्येक अवस्था में काफी है, भले ही वह ईश्वर को मानता हो या न मानता हो, वो अपने ऊपर भूल सकता है। ईश्वर हमको अपने हीरे रास्ते से ऊपर चलने की तौफीक पता करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।
تسجيلات خالد بن وليد الإسلامية السلي شارع هارون الرشيد الرياض هاتف 2410615 فاكس 2410595 خالد بن وليد إسلامك ريكوردينج السلي هارون رشيد ستريت تليفون نمبر 2410615 فاكس 2410595 رياض سعودي عربيه.